यशोदानन्दन जया गज जनरञ्जन जय यशोदानन्दन जया ब्रज जनरञ्जन जया यमुना तीरा बनचारी जया कुंज बिहारी जया यमुना तीरा बनचारी जया कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितै गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधिका रमन ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 11। अध्याय का नाम है पूर्ण समाज चातुर्वर्ण। श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, 12 पांच श्लोक हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि या तो मैं करूँ ऐसा कि मैं ही इसको पढ़ूँगा, आप लोग दोहराएंगे, तो पांच श्लोकों को दो बार मैं पढ़ूँ और आप लोग दोहराएं, या दूसरा ये भी कर सकते हैं कि पांच श्लोकों को एक बार मैं पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे, फिर एक एक करके आप लोग पांच श्लोकों को बोलें, ऐसा कैसा ठीक रहेगा? है क्या? अच्छा, मैं ही मतलब करूं, आप लोग नहीं बोलेंगे, मेरे पीछे ही बोलेंगे केवल? हाँ ठीक है, दो बार में। सत्यम दया तपः शौचम् तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् संतोषः समदृक् सेवा ग्राम्ये हो परमाशन नृणाम्य पर्यये हेक्षा मौनम आत्मविमर्शन अन्नाद्यादेशं विभागो भूतेभ्यश्चा यथार्हतः ते स्वात्मदेवता बुद्धि सुतराम नृषु पांडव श्रवणम कीर्तनम चास स्मरणम महताम गते सेवे ज्ञावन तेरदास्यम सख्यम आत्मसमर्पण नृणामयम परो धर्म सर्वेषां समुदारितः त्रिंशन लक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति सत्यम दया तपः शौचम् तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् संतोषा समदृक् सेवा ग्राम्ये हो परमाशन नृणाम्य पर्यये हेक्षा मौनम आत्मविमर्शन अन्नाद्यादेशं विभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः ते स्वात्मदेवता बुद्धि सुतराम नृषु पांडव श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम माताम गते सेवे ज्ञावन तेरदास्यम सख्यम आत्मसमर्पण नृणामयम परो धर्म सर्वेषां समुदारितः त्रिंशन लक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति। अब देखिए इसके शब्दों का अर्थ और अनुवाद दोनों एक साथ हम बोलेंगे, ठीक है? तो अनुवाद में जो शब्द आए हैं और जो शब्द इसमें शब्दार्थ में आए हैं उन दोनों को हम पढ़ेंगे, मिलान करेंगे। और अंग्रेजी वाली किताब है किसी के पास? है तो मैं जो पूछूंगा तो आप बताइए जो लिखा हुआ अंग्रेजी में, ठीक है? कौन कौन बताएगा आप? हाँ, जो किसी शब्द का अर्थ जहाँ संदेह है, हिंदी में शंका है, तो अंग्रेजी में बताएं, ठीक है ना? अनुवाद मेरे पीछे बोली, सभी मनुष्यों को जिन सामान्य नियम का पालन करना होता है ये है। अब देखिए आपको गिनती भी करना है, क्योंकि कुल कितने हैं इसमें नियम? 30, 30 नियम है, ठीक है ना? तो अनुवाद में हम संख्या गिनेंगे और शब्दार्थ में भी उसका देखेंगे कि किस तरह से प्रभुपाद ने शब्दार्थ भी किया है और अनुवाद भी किया है, तो कुछ अलग भी हो सकता है, उसको भी समझना है, ठीक है? तो पहला है सत्य, है ना? सत्य, तो अनुवाद में सत्य लिखा है और शब्दार्थ में लिखा है बिना तोड़े मरोड़े सत्य का भाषण, ठीक है? कितना अच्छा बताया, बिल्कुल सही, तोड़े मरोड़े बिना, हाँ, ये तोड़ते मरोड़ते हैं सत्य को, हाँ, तो सत्य आपको भी तोड़ेगा मरोड़ेगा। जो व्यक्ति सत्य को तोड़ता मरोड़ता है, सत्य भी उसको क्या करता है? तोड़ता और मरोड़ता है। जो सत्य को नष्ट करता है, सत्य उसको नष्ट करता है, ठीक है? और जो सत्य की रक्षा करता है, सत्य उसकी रक्षा करता है, है ना? तो सबसे पहला जो नियम है धर्म है, धर्म के 30 लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण धर्म का क्या है? सत्य। तो प्रभुपाद शब्दार्थ में लिखते हैं बिना तोड़े मरोड़े सत्य का भाषण, ठीक है? अनुवाद में तो केवल सत्य लिखा है। फिर दूसरा जो धर्म का लक्षण है वो दया, अनुवाद में लिखा है दया, और शब्दार्थ में लिखा है प्रत्येक दुखी व्यक्ति पर सहानुभूति। तो ये भी जो है समझने वाली बात है, दया का मतलब क्या है? कोई दुखी हो है? उसी के ऊपर दया करना है ना? तो ये जो है दूसरा लक्षण है, ठीक है? फिर तीसरा लक्षण आप भी देख सकते हैं, जिनके पास किताब नहीं है इस श्लोक में देख सकते हैं, तीसरा क्या है? तप है? तो प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं तपस्या महीने में कुछ दिन उपवास करना, और शब्दार्थ में लिखा है तपस्या यथा एकादशी के दिन मास में 2 बार उपवास करना, ये तपस्या, ठीक है? अब कितना नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर में प्रभुपाद लिखते हैं अनुवाद में दिन में दो बार स्नान। 4 नंबर वैसे क्या है इसमें, इस श्लोक में? शौचम, है ना? और शब्दार्थ लिखा है स्वच्छता, दिन में 2 बार सुबह शाम नियमित रूप से स्नान करना तथा भगवान के नाम का जप करना, याद रखना नाम को, नाम का स्मरण करना, तो ये शौचम। तो एक शौचम आंतरिक है, कैसे? नाम का जप करना, नाम का स्मरण करना, और एक बाहरी शौच पवित्रता, 2 बार स्नान करना, है ना? तो ये हो गया शौचम। अच्छा, फिर 5वां कितना है, क्या है? तितिक्षा, तितिक्षा है ना? तो अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं सहनशीलता, और शब्दार्थ में लिखा है सहन शक्ति ऋतु परिवर्तनों या असुविधाजनक परिस्थितियों में भी अविचलित रहना। ये क्या है? तितिक्षा, सहनशीलता, ऋतु परिवर्तन होता है ना, बरसात, जाड़ा, गर्मी, है ना? तो इनमें अविचलित रहना, मतलब जो नियम है जैसे मंगल आरती आना है, उठना है, तो ये जो है नियम का पालन करना ही है, स्नान करना, है ना? तो ये सब जो है मतलब अविचलित रहने का ये मतलब है। अच्छा, कितने हो गए? 5 हो गए। अच्छा, 6वां क्या है? इच्छा है? तो इच्छा, तो अनुवाद में लिखा है अच्छे बुरे का विवेक, और शब्दार्थ ने कहा है सत असत में अंतर करना, सत असत में अंतर करना। सत का मतलब अच्छा, असत का मतलब बुरा, ठीक है। तो अंतर करना, अंतर करना चाहिए। ये थोड़े कि नहीं, हम अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं करते, हम बहुत बड़े महात्मा हैं, है ना। अच्छे बुरे में अंतर करना चाहिए। कृष्ण जो कहते हैं वो अच्छा है, और जो कृष्ण ने नहीं कहा वो सब बुरा है, सीधी बात है, है ना। अच्छे बुरे में अंतर करना, कितने हो गए? छह हो गए। अच्छा, सातवां क्या है? सम, सम। तो अनुवाद में लिखा है सम, मन का संयम है। और इसमें भी लिखा है शब्दार्थ, मन का संयम, मन को मनमाना कार्य ना करने देना, मन को मनमाना कार्य ना करने देना, है ना। कहते भाई मेरा मन तो ऐसा करता है, मेरा मन तो नहीं मानता, है ना। तो सम का मतलब क्या है? आपका मन नहीं मानता, आपका मन ये चाहता है, आपका मन वो करता है, आपका मन खाना चाहता है, आपका मन सोना चाहता है, तो मन के अनुसार नहीं काम करना है, इसको कहते हैं सम, है ना। अब अगला कितना नंबर है? आठ। आठवें में क्या है? दम। दम तो अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं इंद्रिय संयम, इंद्रियों को संयम करना। और शब्दार्थ में लिखा है इंद्रियों का संयम, इंद्रियों को असंयमित ना होने देना। हाँ, हमारी इंद्रियां चाहती ही भोगना, है ना, तो इनको जो है नियंत्रित करना है। फिर कितना नंबर?
नौ।
नौ नंबर में क्या है? अहिंसा। तो अहिंसा में अनुवाद में अहिंसा लिखा हुआ है, और शब्दार्थ में लिखा है अहिंसा किसी जीव को तीन प्रकार के तापों से पीड़ित ना होने देना, तीन प्रकार के ताप ना पहुंचाना। आप तीन प्रकार के ताप ना पहुंचाए, अंग्रेजी में क्या लिखा है? Not subjecting. तो हम किसी को ना पहुंचाएं, तीन प्रकार के ताप ना पहुंचाएं। तो तीन प्रकार के ताप क्या होते हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। लेकिन हम किसी को अगर ताप पहुंचाते हैं तो तीन प्रकार में से एक ही प्रकार का ताप होता है, वो आदि भौतिक। तो फिर ये तीन प्रकार के ताप तो हम फिर नहीं कह सकते कि तीन प्रकार के ताप हम ना पहुंचाएं, क्योंकि तीन प्रकार के ताप तो हम पहुंचा भी नहीं सकते ना। क्योंकि आदि भौतिक ताप ही हम पहुंचा सकते हैं किसी को, आध्यात्मिक और आदि दैविक ताप तो है, आध्यात्मिक ताप तो शरीर से ही प्राप्त होते हैं या अपने मन से प्राप्त होते हैं, आदि दैविक ताप प्रकृति से, प्रकृति प्रकोपों से प्राप्त होते हैं। तो फिर तीन प्रकार से हम पीड़ित ना करें किसी को, इसका अर्थ दूसरा फिर ये भी है कि हम शरीर, मन और वाणी से कष्ट ना पहुँचाएं, ये अर्थ है ना। हम अपने शरीर से कष्ट पहुंचा सकते हैं किसी को, अपनी वाणी से कष्ट पहुंचा सकते हैं, और मन के द्वारा भी कष्ट पहुंचा सकते हैं। वाणी के द्वारा कठोर शब्द बोलेंगे, हैं, अप्रिय शब्द बोलेंगे, है ना, और शरीर से प्रहार करेंगे, है ना, और मन से, मन से कैसे कष्ट पहुंचाते हैं, है? उसको अगर पता नहीं चला तो कष्ट नहीं मिला ना उसको। लेकिन अगर आप अपने मन की भावना को, दुर्भावना को प्रकट करते हैं अपने चेहरे से, अपनी आँखों से, अपनी चेष्टाओं से, तो वो मन के द्वारा कष्ट पहुंचाना है, है ना। किसी को आप कभी मुस्कुरा करके देखते हैं उसका अपमान करने के लिए, या उसको गुस्से से देखते हैं उसका अपमान करने के लिए, उसकी दुर्भावना है ना चढ़ाने की चेष्टा करते हैं, तो आप बोले तो कुछ नहीं, अपनी चेष्टाओं से उसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं, या कई प्रकार से अपमान कर सकते हैं। तो ये आपके चेहरे के भाव से ही पता चलता है, आपकी दुर्भावना, अपनी दुर्भावना आप प्रकट कर सकते हैं, तो मन के द्वारा भी आप किसी को कष्ट पहुँचा सकते हैं। तो तीन प्रकार के तापों से पीड़ित ना होने देना, इसका मतलब है कि आप शरीर से, मन से और वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, है ना। कितना हो गया? नौ हो गया। दसवां क्या है? ब्रह्मचर्यम है। तो अनुवाद में प्रभुपाद ने ब्रह्मचर्य ही लिखा है, और शब्दार्थ में लिखा है अपने वीर का दुरुपयोग ना होने देना। फिर कोष्ठक के अंदर अपनी पत्नी के द्वारा किसी अन्य स्त्री से संभोग ना करना, तथा वर्जित अवसरों पर यथा मासिक धर्म के अवसर पर पत्नी के साथ संभोग ना करना, ये ब्रह्मचर्य है। कितना अब कितना नंबर? ग्यारह नंबर में क्या है? स्वाध्याय, त्याग। त्याग तो शब्दार्थ में लिखा है दान, प्रभुपाद ने उसको नहीं शब्दार्थ नहीं अनुवाद में लिखा है दान है? और शब्दार्थ में लिखा है अपनी आय का कम से कम 50% दान में देना। कम से कम 50% दान में देना,
कम से कम,
कम से कम। कम से कम। तो अगर हम ऐसा बोलें तो कई लोग फिर आएंगे ही नहीं मंदिर, है ना, है ना। लेकिन हमने फिर जो है मतलब ये कहा कि भाई इतना नहीं हो सकता और कई बार संभव भी नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है, है ना। तो कम से कम 10% दो, 10% तो दो, है ना। और 10% भी नहीं दे सकते तो 5% दो, ठीक है ना। तो ये मतलब जरूरी है, जरूरी है ना। तो ये जो है त्याग। अब कितना नंबर है?
12।
12 में क्या है? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में अनुवाद में लिखा है शास्त्रों का अध्ययन, और शब्दार्थ में लिखा है भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथों का पठन, अथवा जो वैदिक संस्कृति के लोग नहीं हैं उनके द्वारा बाइबल या कुरान का पठन। ये भी है ना। तो प्रभुपाद की इतनी उदारता है कि सबको शामिल कर रहे हैं, सबको शामिल कर रहे हैं, है ना। तो ये स्वाध्याय है ना। इसके बाद कितना नंबर? 13 में क्या है? आर्जवम। 13 में आर्जवम। तो अनुवाद में लिखा है सादगी। सादगी समझ गए हैं? सादगी। और इसमें लिखा है शब्दार्थ में सादगी मानसिक द्वंद्व से मुक्ति। मतलब इसका अर्थ है सरलता। आपके अंदर सरलता है तो मानसिक द्वंद्व होगा ही नहीं, क्योंकि जिस समय कुटिलता होती है ना, और आवश्यकताएं आप ज़्यादा बढ़ाते हैं, सरल आवश्यकताओं से ज़्यादा आपकी आवश्यकता बढ़ाते हैं, तो फिर मानसिक द्वंद्व होता है, ये खाऊं या वो खाऊं, ये करूं वो करूं, है ना। लेकिन आसानी से जो कुछ मिल गया सरल, है ना, अपनी आवश्यकताएँ सरल हैं तो जो है कोई मानसिक द्वंद्व होता ही नहीं, है ना। तो सरलता का मतलब है मानसिक द्वंद्व से मुक्ति। अब कितना नंबर है? 14 नंबर में क्या है?
संतोष।
तो इसमें अनुवाद में लिखा है संतोष, और शब्दार्थ में लिखा है कठिन प्रयास के बिना जो भी उपलब्ध हो उसी में संतुष्ट रहना। कितना अच्छा है, है? ज़्यादा प्रयास ना करो, जो मिल गया तो ठीक है, संतुष्ट हो गए। नहीं अभी असंतुष्ट हैं, नहीं ये होना चाहिए, नहीं वो होना चाहिए, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है ना। तो इसमें क्या है? संतोष। कठिन प्रयास के बिना जो उपलब्ध हो उसमें संतोष। अब कितना नंबर है?
15।
क्या है? सामुद्रिक सेवा। सामुद्रिक का मतलब है समान दृष्टि वाला, जिसकी दृष्टि समान है उसकी सेवा करना, जिसकी दृष्टि समान है उसकी सेवा करना, है ना। तो यहाँ पर अनुवाद में लिखा है साधु पुरुषों की सेवा, साधु पुरुषों की सेवा। साधु की दृष्टि समान होती है, अमीर गरीब, है ना, गोरा काला, भारतीय और चाइनीज, है पाकिस्तानी, है ना। हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत देना चाहता, प्रत्येक जीव, है ना। और प्रत्येक जीव है मतलब चूँकि भगवान के अंश हैं, तो क्यों अनावश्यक हत्या की जाए, गो हत्या क्यों की जाए। तो समृद्ध का मतलब ये भी है, है? कि मानव सेवा, माधव सेवा, और पशुओं की सेवा, हाँ पशुओं की हत्या करो खूब, और मानव सेवा माधव सेवा का नारा लगाएं, नर सेवा नारायण सेवा, और पशुओं की हत्या गौ की हत्या करेंगे, मनुष्यों की सेवा करेंगे, ये समृद्ध नहीं है ना, है ना। तो समृद्ध क्या है इसमें? समृद्ध सेवा। कितना नंबर है? 15 नंबर है समृद्ध सेवा। तो साधु पुरुषों की सेवा लिखा है, और शब्दार्थ में लिखा है उन साधु पुरुषों की सेवा करना जो एक जीव तथा दूसरे जीव में अंतर नहीं करते, तथा जो प्रत्येक जीव को आत्मा के रूप में देखते हैं। पंडितासमदर्शिनः, पंडितासमदर्शिनः कौन से शास्त्र में है?
गीता में।
कौन से अध्याय में है?
पांचवें
अध्याय में। कौन से श्लोक संख्या है? 18। पंडिता समदर्शिना है ना। तो ये अब कितना नंबर है?
16।
क्या लिखा है? ग्राम में ई है उपरमहा, ग्राम में ई है उपरमहा, है ना। इसके साथ में वो एक शब्द वो भी इसके साथ है, स्नेह। स्नेह माने धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे। ग्राम में ई है उपरमहा, तो इसमें लिखा है अनावश्यक कार्यों से क्रम सा अवकाश लेना। स्नेह का मतलब क्रम क्रम से, एकदम से नहीं छोड़ना है, लेकिन एकदम से नहीं छोड़ा जाता, तो धीरे धीरे छोड़ना है, है? क्या? अनावश्यक कार्यों से कुछ छोड़ना है। और इसमें लिखा है शब्दार्थ में तथा कथित परोपकारी कार्यों में भाग ना लेते हुए। तथा कथित परोपकारी कार्य है ना, किसी की शादी है, किसी का ये है ना भोज है, भंडारा है, ये है वो है, पता नहीं कितने कितने लोग जो है अनावश्यक अपने बना लेते हैं काम, तो इनमें जो है धीरे धीरे अपने को अलग करना। इसके बाद कितना नंबर है?
17।
क्या लिखा है? निर्णाम विपर्य ईहा, इच्छा। निर्णाम विपर्य ईहा इच्छा, है ना। तो इसमें लिखा है मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता समझना। इच्छा का मतलब है देखना, है ना। निर्णाम माने मनुष्यों में विपर्यय, विपर्यय का मतलब है उल्टे, है ना। और ईहा का मतलब है इच्छाएं, मनुष्यों की जो है उल्टी इच्छाओं को देखना कि ये व्यर्थ हैं। उल्टी इच्छाएं करते हैं मनुष्य लोग, कितनी उल्टी इच्छाएं, कृष्ण भक्ति को छोड़ करके कितनी कितनी इच्छाएं करते हैं। नलाम में पर गए ईहा इच्छा है। तो इसमें अनुवाद में लिखा है मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता समझना। और शब्दार्थ में लिखा है अनावश्यक कार्य वाद विवाद, इच्छा का मतलब वाद विवाद। अंग्रेजी में क्या लिखा है? जी डिस्कशन, हाँ डिस्कशन। इच्छा का मतलब देखना भी है या डिस्कशन चर्चा करना है, तो चर्चा करते हैं ना, प्रभुपाद भी चर्चा करते हैं कि अनावश्यक कितने अनावश्यक लोगों ने अपनी आवश्यकताएं बना ली हैं, जिनकी आवश्यकताएं नहीं लेकिन वो आवश्यकताएं बना ली हैं जो आवश्यक है ही नहीं अपने जीवन में, है ना। और नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं गाड़ियों के, ये वो पता नहीं कितने एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं जो अनावश्यक हैं, तो ये जो है इसको देखना है। अब आगे कितना नंबर है? 18। 18 में क्या लिखा है? मौनम। तो अनुवाद में लिखा है गंभीर तथा शांत बने रहना, गंभीर और शांत बने रहना और व्यर्थ की बातें करने से बचना, ये पूरा जो है मौनम के अंदर है, है? और अनुवाद शब्दार्थ में लिखा है गंभीर तथा शांत रहना, ठीक है, मतलब प्रजलपन नहीं करना, है ना। ग्राम में कथा ना कही वो, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ग्राम में कथा ना कही वो, है ना। तो ये है मौनम। मौन का देव नहीं कि बात ही ना करो, मौनी बाबा होते हैं भाई बात ही नहीं करेंगे, तो आप उनको उससे मतलब उपदेश पूछें कि कुछ आध्यात्मिक उपदेश दीजिए, तो मौनी बाबा मौन बैठे हैं, नहीं मौन का ये मतलब नहीं है। मौन का मतलब व्यर्थ की बातें ना करो, लेकिन कृष्ण की चर्चा करना है, हाँ कृष्ण का गुणगान करना है, कृष्ण के संदेश का प्रचार करना है, तो वहाँ पर मौन नहीं रहना है, है ना। वहाँ पर तो आगे और दूसरी दूसरा लक्षण है धर्म का कीर्तनम, जो आगे आएगा, है ना। तो कीर्तनम का मतलब है कि वहाँ पर वो लक्षण लागू होगा कि आप बोलिए, बेकार की बातें अगर करने का मौका मिलता है तो धर्म का लक्षण क्या है? मौन। हम अपना समय क्यों खराब करते हैं, है ना। अब आगे कितना नंबर है?
19।
क्या लिखा है? आत्मविमर्शनम। तो अनुवाद में लिखा है मनुष्य शरीर या इस आत्मा के विषय में विचार करना, मनुष्य शरीर है या आत्मा इस विषय में विचार करना, हाँ कि हम जो है क्या है, शरीर है या आत्मा है, इस पर विचार करना है, गहराई से विचार करना है, है ना। और संदर्भ ने कहा है अपने में शोध ये कि मनुष्य शरीर है या आत्मा, तो ये मैं। अब कितना नंबर है?
20।
क्या लिखा है? हाँ अन्न आद्य आदे संविभागो भूतेभ्य यथार्हतः, है ना। यथा अर्हता का मतलब है जो जितना योग्य है उसके अनुसार प्राणियों में विभाजन करना है, है? किस चीज का? अन्न आद्य आदेह। अन्न आद्य का मतलब है जो भोजन है? की जो वस्तुएं हैं, अन्न आद्य भोजन, अन्न जो है आदि जो भोजन की वस्तुएं हैं उनका संविभाग करना है प्राणियों में जो जितना योग्य होता है उसके अनुसार है। तो इसमें लिखा है अनुवाद में, सभी जीवों पशुओं तथा मनुष्यों में अन्न का समान वितरण करना, यथा योग्य वितरण करना, ऐसे समझना चाहिए, है ना। और शब्दार्थ में लिखा है अन्न पेय आदि का समान वितरण विभिन्न जीवों के लिए अनुकूल यथा अर्हता, यथा योग्य। आप कितना नंबर है?
21।
क्या है?
तेसु आत्मदेवता
बुद्धि, है ना। तो तेसु, तेसु का मतलब भूते भी, आप पहले आ चुका ना प्राणियों में, उनमें आत्मबुद्धि या देवता बुद्धि करना। आत्म का मतलब अपने समान, कुछ तो उनको अपने समान समझना और कुछ को अपने से बढ़कर के समझना, आत्मदेवता बुद्धि, है ना। शब्दार्थ में लिखा है सभी जीवों पशुओं तथा मनुष्यों में, नहीं नींद हो गया, प्रत्येक आत्मा को विशिष्ट या मनुष्य को परमेश्वर का अंश मानना। और शब्दार्थ में लिखा है आत्मा या देवताओं के रूप में स्वीकार करना, सारे जीवों में, सारे जीवों को आत्मा के रूप में या देवताओं के रूप में स्वीकार करना। अपने से श्रेष्ठ हैं तो सम्मान करो, और जो अपने से नीचे हैं उनको भी अपने समान समझो, है ना। मतलब उनका अपमान नहीं करना है कि हमसे नीचे हैं ये आत्मा, है? आत्मबुद्धि और देवता बुद्धि देखना है। अब कितना नंबर है?
22।
क्या लिखा है? श्रवणम, है ना। तो देखिए 21 जो है लक्षण धर्म के, जो लक्षण 21 हैं ये सामान्य लक्षण हैं, और अब ये जो 9 लक्षण हैं धर्म के ये अब विशेष हैं जो कि भक्ति के 9 विधियां हैं, भक्ति की 9 विधियां हैं। अब देखिए भक्ति की जो 9 विधियां हैं वे बिल्कुल क्रम से उसी क्रम में दी गई हैं। भक्ति की 9 विधियां श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किसको आता है? हाथ उठाइए। 9 नवधा भक्ति, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो अब देखिए उसमें जो 22 नंबर, यहाँ 22 नंबर है, उसमें पहला नंबर है क्या? श्रवणम। तो इसमें वही है पहला नंबर श्रवणम। तो इसमें लिखा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों तथा उनके उपदेशों को सुनना, जो भगवान साधु पुरुषों के आश्रय हैं, है? तो श्रवणम ये हो गया शब्दार्थ में सुनना। फिर कितना नंबर?
23
नंबर। 23 नंबर में क्या है? कीर्तनम। तो कीर्तनम में लिखा हुआ है इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना, और शब्दार्थ में लिखा कीर्तन करना, तो ये भी नवधा भक्ति का दूसरा लक्षण है। इसके बाद 24 नंबर में क्या है? स्मरणम। तो यहाँ अनुवाद में लिखा इनका नित्य स्मरण करना, किन का नित्य स्मरण करना? भगवान के उपदेशों और कार्यकलापों का स्मरण करना। और इसमें शब्दार्थ में स्मरण करना भगवान के शब्दों तथा कार्यों का स्मरण करना, नवधा भक्ति में तीसरा नंबर, ठीक है ना, तीसरा नंबर है, तो वही शब्द है अभी तीसरा। फिर कितना नंबर?
25
नंबर में सेवा करने का प्रयास, हाँ इसमें है सेवा, और इसमें है सेवा करने का प्रयास करना, और इसमें लिखा है सेवा, हाँ इसमें भी सेवा लिखा है, हैं। और नवधा भक्ति में क्या है? पाद सेवनम, तो वही पाद सेवनम ही यहाँ पर सेवा, तो वही चीज है ना, उसी क्रम में जो चौथा नंबर है नवधा भक्ति में पाद सेवनम, हैं, तो यहाँ पर है सेवा चौथा नंबर। अब कितना नंबर है इसमें?
26
में क्या है?
इज्ञा।
इज्ञा का मतलब पूजा करना, शब्दार्थ में पूजा लिखा है, और नवधा भक्ति में क्या है? अर्चनम, वही इज्ञा। है, तो बिल्कुल क्रम में वही क्रम मिल रहा है। इसके बाद कितना नंबर 27 में क्या है, अवनति ही। तो अनुवाद में लिखा है नमस्कार करना, और शब्दार्थ में भी लिखा है नमस्कार करना, और नवधा भक्ति में वंदनम, हाँ वंदना नमस्कार करना, तो वही क्रम। शब्द का थोड़ा अंतर है लेकिन वही चीज है, वंदनम नमस्कार करना है ना। इसके बाद कितना नंबर है 28 क्या है, दास्यम, दास बनना, और इसमें लिखा है सेवा करना, ठीक है, दास्यम दास बनना, और उसमें क्या है नवधा भक्ति में, हाँ दास दास्यम, तो बिल्कुल वही वही शब्द मिल गया। इसके बाद कितना नंबर 29 में क्या है, सख्यम, तो मित्र बनना अनुवाद में लिखा है, और मित्र मानना शब्दार्थ में लिखा है मित्र मानना, और नवधा भक्ति में भी वही है सख्यम। इसके बाद 30 क्या है, आत्मसमर्पणम, तो इसमें लिखा है आत्मसमर्पण करना, शब्दार्थ में का अपना सब कुछ अर्पित कर देना, नवधा भक्ति में क्या है आत्मनिवेदनम, है ना। तो नवधा भक्ति के जो नौ लक्षण बिल्कुल क्रम से यहाँ पर दिए गए। तो नारद जी जो है धर्म के 30 लक्षण जो बतला रहे हैं उसमें अंतिम जो 9 हैं वो वही हैं जो प्रहलाद जी ने बताए हैं नवधा भक्ति के लक्षण, है ना। तो इस तरह से फिर अब शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, नृणाम सारे मनुष्यों का अयम यह परहा सर्वश्रेष्ठ धर्मः धार्मिक सिद्धांत सर्वेषां सबों में समुदाहृतः पूर्णतया वर्णित त्रिंशत् लक्षणवान 30 लक्षणों से युक्त राजन हे राजा सर्व आत्मा सबों के परमात्मा येन जिससे तुष्यति तुष्ट होते हैं। तो अनुवाद में लिखा है हे राजन बोले हे युधिष्ठिर मनुष्य जीवन में इन 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए, मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकता है। अब देखिए इसमें शब्दार्थ जो श्लोक है 5 श्लोक हैं, तो अंत में क्या है त्रिंसन लक्षणवान राजन, त्रिंसन लक्षणवान यानी 30 लक्षणवान, नृणाम अयम परो धर्मा, मनुष्यों का ये परम धर्म है। और धर्म की बात बताइए कि 30 लक्षणवान, लक्षणवान का मतलब जिसमें लक्षण हो, और कितने लक्षण 30 लक्षण, तो धर्म को बताया गया है त्रिंसन लक्षणवान, मनुष्यों का ये परम धर्म है जो 30 लक्षणों वाला है, मनुष्यों का जो परम धर्म है ये 30 लक्षणों वाला है, त्रिंसन लक्षणवान। ये मनुष्यों का जो परम धर्म है उसकी विशेषता क्या है, त्रिंसन लक्षणवान, जैसे भगवान जिनके पास 6 प्रकार के भाग हैं वो भगवान कहलाते हैं, धनवान जिसके पास धन हो, बलवान जिसके पास बल हो, है ना, उसी प्रकार से त्रिंसन लक्षणवान क्या है धर्म, मनुष्यों का धर्म क्या है 30 लक्षणों वाला है, है ना। त्रिंसन लक्षणवान राजन सर्वात्मा ये न तुष्यति, जिसके द्वारा सर्वात्मा प्रसन्न होते हैं, सर्वात्मा उन सबों की आत्मा भगवान। तो यहाँ पर मतलब कृष्ण का नाम नहीं लिया गया है कि लोग कोई सोचे कि भाई कृष्ण तो जो है हिंदुओं के देवता हैं, सर्वात्मा सबों की आत्मा कृष्ण ही है, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा शब्द दिया गया है जैसे कोई मतलब शिकायत ना करे कि भाई आप तो आप तो कृष्ण को मानते हैं, हम तो नहीं मानते कृष्ण को, यहाँ तो किसके बाद कहिए कौन प्रसन्न होते हैं सर्वात्मा, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की, मनुष्यों को पशुओं से विमोदित करने की दृष्टि से, अंग्रेजी में क्या लिखा है,
डिस्टिंक्ट,
डिस्टिंक्ट, हाँ, अंतर करना, मनुष्यों को पशुओं से अलग करने की दृष्टि से नारद मुनि ने संतुति की है कि प्रत्येक मनुष्य और उपर्युक्त 30 गुणों की शिक्षा प्राप्त करे, जिससे मनुष्यों से पशुओं से मनुष्य अलग हो जाए। नहीं तो आप जो है दो पैर के पशु हैं, वो चार पैर के पशु हैं, वो दो, आप दो पैर के पशु हैं, कोई अंतर नहीं है। और एक अंतर यह है, उनके सींग हैं और पूंछ हैं, आपके सींग भी नहीं पूंछ भी नहीं है, है ना। आप दो पैर के पशु हैं, हैं, वो चार पैर के पशु हैं, और उनके पास सींग भी है, उनके पास पूंछ भी है, आपके सींग भी नहीं है, पूंछ भी नहीं है, है ना। यही है। तो इसलिए अगर आप ये धर्म का पालन करते हैं तभी आप मनुष्य कहलाएंगे, नहीं तो आप दो पैर के पशु हैं, जो कहते हैं द्विपाद पशु। मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती, मनुष्य के रूप में पशु चर रहे हैं, मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती, है ना। धर्मो ये को नराणाम विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। मनुष्य में धर्म की विशेषता है, धर्म के बिना पशु, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, संतुष्टि की है नारद मुनि ने कि प्रत्येक मनुष्य उपर्युक्त 30 गुणों की शिक्षा प्राप्त करे। आजकल पूरे विश्व में सर्वत्र ही धर्म निरपेक्ष राज्य का हो हल्ला किया जा रहा है, हाँ, खूब हल्ला मचा रहे हैं, हाँ? क्या सेकुलर कंट्री, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, भाई हम धर्म में नहीं बंधना चाहते हैं, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, किस मामले में आगे बढ़ गए, पशुता के मामले में आगे बढ़ गए हैं, हम पशु की दिशा में जा रहे हैं, हम धर्म निरपेक्ष बनना चाहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं सर्वत्र धर्म निरपेक्ष राज्य का हो हल्ला किया जा रहा है। एक ऐसा राज्य जिसकी रुचि केवल सांसारिक कार्यों में होगी, केवल इंद्रिय तृप्ति, पशु, है ना। और पशुओं की इंद्रियां तो मतलब बहुत सीमित हैं, वो इतना इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते, उनकी इंद्रियां ऐसी बनी है, वो सीमित इंद्रिय है। लेकिन जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में लग जाए तो असीमित इंद्रिय तृप्ति और उसके लिए नरक का खतरा सामने आ जाता है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में लग जाए तो उसकी इंद्रियां विकसित हैं, पशुओं की इंद्रियां उतनी विकसित नहीं है कि वो उतना ठीक से देख सकें, सुन सकें, भोग सकें, पशु नहीं भोग सकते। तो उनके जीवन का इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति उनकी सीमित ही होती है, वो नहीं उतना कर सकते। मनुष्य इंद्रियां विकसित हैं, है ना। तो धर्म अगर छोड़ दिया तो फिर ये जो है मनुष्य पशु की योनि में जाएगा, अगले जन्म में पशु की योनि में जाएगा, या पशु से भी ज्यादा नीचे, कहाँ, नरक में। नरक में जाना तो पशु से भी ज्यादा कष्ट कारक है, पशु का जीवन से भी कष्ट ज्यादा कष्ट है, नरक में जाना है, है ना। तो प्रभुपाल लिखते हैं किंतु यदि राज्य के नागरिकों को उपर्युक्त सद्गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा, कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। उदाहरणार्थ यदि सारे लोग असत्यवादी हो जाएं तो राज्य कैसे सुखी रह सकेगा। सोचिए, सबसे पहला लक्षण क्या है, सत्यम, सभी लोग असत्यवादी हो जाएं, है ना, अब कैसे काम चलेगा, हाँ, कोई किसी का विश्वास ना करे कैसे काम चलेगा। हर व्यक्ति को जो है, हर व्यक्ति के ऊपर संदेह है, है ना, कैसे काम चलेगा, है ना। राज्य कैसे सुखी रह सकता है, सोचिए कितना व्यवहारिक है, प्रभुपाद बता रहे हैं, है? यहाँ तो अभी ईश्वर की बात ही नहीं आई है, ईश्वर की कोई चर्चा ही नहीं आई है कि हम कृष्ण को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, अभी तो उसकी चर्चा ही नहीं आई है, एक सामान्य बात है सत्य। अतएव प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या बौद्ध अथवा अन्य किसी संप्रदाय का हो, हर एक को सत्यवादी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। अभी तो ये बात ही नहीं है, ईसाई हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अभी तो ये बात ही नहीं है। तो राज्य शासन का ये कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को सत्य बनाया जाए, सत्यवादी बनाया जाए, है ना। आगे इसी पर हर एक को दयालु बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए, है? दूसरा लक्षण क्या है, दया, दयालु बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। तो आपने सामने, आपके सामने ही अगर कोई व्यक्ति भूखा है और आपके पास भोजन है तो कुछ हिस्सा दो उसको, ऐसा है ना। तो ये दया, दया है। कोई कष्ट है, किसी को कष्ट है, आपके पास दवाई है तो दवाई दे दो, कपड़ा है कपड़ा दे दो, तो ये जो है दया कहलाती है। हरे को दयालु बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए और महीने में कुछ दिन उपवास करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह है तपस्या, इसमें है ना तपस्या। तो प्रभुपाद क्रम से चर्चा कर रहे हैं, पहला सत्य, दूसरा दया और तीसरा तपस्या, महीने में कुछ दिन। अब प्रभुपाद ने एकादशी की बात नहीं करी कि मुसलमान है वो एकादशी नहीं मानते, तो कुछ और इनको कुछ उपवास करना है ना, उनके भी धर्म में है कुछ, तो हर धर्म में कुछ कोई दिन तो होता ही है उपवास करने का। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कुछ दिन उपवास करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, हैं शौचम। तो प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को दिन में दो बार नहाना चाहिए, अपने दांतों को और शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, जरूरी है। अपने शरीर को स्वच्छ रखना है, दांतों को स्वच्छ रखना है, दो बार स्नान करना है। ठंड के दिनों में तो अगर एक बार भी स्नान करते हैं तो चल जाता है, क्योंकि पसीना से जो है शरीर चिपचिप नहीं हो रहा है तो चल जाएगा। गर्मी में तो शरीर से चिपचिप होता है पसीना से, तो दो बार या तीन बार भी स्नान करना पड़ सकता है। और दांतों को स्वच्छ रखना जरूरी है, क्योंकि भोजन जो है हमेशा दांतों के अंदर रहता है, है? और वो सड़ता है और फिर वो सड़ करके पेट के अंदर जाता है ना, और दांतों में कीड़े भी पड़ सकते हैं, है ना। तो ये सब जो है विषैला जो प्रभाव है शरीर के अंदर पैदा होता है दांतों के कारण, इसलिए हमेशा दांतों को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। और शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए और भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करके मन को आंतरिक रूप से विमल बनाना चाहिए। भगवान का पवित्र नाम, ये आंतरिक स्वच्छता, मन की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, दांतों को स्वच्छ रखना, स्नान करना और मन की स्वच्छता, भगवान के पवित्र। तो प्रभुपाद ने ये भी नहीं कहा कि भाई आप हरे कृष्ण का जाप करिए, तो क्या प्रत्येक धर्म में कोई न कोई भगवान का नाम है ना। तो प्रभुपाद का ये कहना है कि कोई भी नाम हो आप करो इसको मन को शुद्ध करने के लिए। इसी में ही प्रभुपाद लिखते हैं ईश्वर एक है, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो भाषा संबंधी उच्चारण की भिन्नता पर विचार किए बिना भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। तो प्रत्येक धर्म में कोई भगवान का नाम है उसका आप करो। तो प्रभुपाद इतने उदार हैं कि आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि नहीं नहीं हरे कृष्ण का ही जप करना पड़ेगा, नहीं है ना। इसके बाद क्या है और आगे, प्रतीक्षा। तो उसको प्रभुपाद ने छोड़ दिया है और फिर ब्रह्मचर्य में आए। ब्रह्मचर्य कितने नंबर में है, हाँ दसवें नंबर में ब्रह्मचर्य है ना। तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं व्यर्थ में वीर स्खलन ना होने से मनुष्य की स्मृति, संकल्प, क्रियाशीलता तथा शारीरिक शक्ति अत्यंत प्रबल बनती है। तो इसकी बात प्रभुपाद कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा अनुभूति में सरल रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सा इसमें है, इसमें तेरा क्या लिखा है, आर जबम है ना, सरलता। तो प्रभुपाद लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा अनुभूति में सरल रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। बातों घुमा फिरा के नहीं बोलना, सरल तरीके से सरल रहने की शिक्षा, और शरीर तथा मन से संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। कितना नंबर है, शरीर तथा मन से संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए, 14 नंबर है ना। संतोष ये मनुष्य के सामान्य गुण हैं। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं। अब इसमें जो 21 लक्षण जो बताए हैं शुरू के, उसमें से प्रभुपाद ने चर्चा की तात्पर्य में पहला सत्य की, दूसरा दया की, तीसरा तप की, चौथा शौच की, और फिर दसवां ब्रह्मचर्य की, और 13वां आर्जव सरलता, और 14वां संतोष। यानी 1, 2, 3, 4 फिर 10, 13, 14 कितने हुए हैं, 7 सात लक्षण की चर्चा की प्रभुपाद ने, तो बहुत लंबा तात्पर्य हो जाता ना। ये मनुष्य के सामान्य गुण हैं, ये क्या है विशेष नहीं है, ये सामान्य गुण है। ये जैसे कि पशु से कुछ मतलब लगता है कि हाँ भाई मनुष्य बना है। फिर आगे इसमें धर्म निरपेक्ष या धार्मिक राज्य का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ इसमें कोई बात ही नहीं है, तो सामान्य लक्षण है मनुष्य के। यहाँ तो कोई धर्म की बात नहीं आई कि भाई हम मुसलमान हैं तो हम ये हम सत्य का पालन नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, दया का पालन नहीं करेंगे। तो सामान्य बात है मनुष्यों के लिए, मनुष्य में सामान्य बात है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक मनुष्य को इन 30 गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तब तक शांति नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी शांति पाने के लिए आगे के 9 लक्षण और भी हैं, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अंततो गत्वा इस प्रकार संतुति की जाती है, श्रवणम कीर्तनम चा स स्मरणम महताम गते सेवे जीवन तिरदास्यम सख्यम आत्मसमर्पणम। ये प्रभुपाद ने श्लोक दिया, 9 भक्ति के जो 9 लक्षण है उनका श्लोक दिया। तो 21 लक्षण जो है धर्म के सामान्य हैं, सामान्य लक्षण है। इसमें कोई धर्म की बात ही नहीं आती, ईश्वर की कोई बात ही नहीं आती है, सामान्य बात है। आपस में जो व्यवहार करना है सामान्य है, लेकिन फिर ईश्वर के विषय में ये जो है विशेष 9 है। ये जो है विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में है, श्रवणम कीर्तनम, है ना। जो दूसरे धर्मों में कुछ नहीं है ईश्वर के बारे में, ईश्वर का रूप कैसा है, हैं ईश्वर के कितने अलग अलग नाम है, कैसे कैसे गुण हैं, दूसरे शास्त्रों में दूसरे धर्मों में नहीं है, है ना। तो यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा। तो अगर हमारे धर्म में कुछ विशेष बातें हैं ईश्वर के बारे में तो हमें तो करना पड़ेगा ना। दूसरे शास्त्रों में कुछ भी नहीं है, श्रवण क्या करें ईश्वर के बारे में, कुछ है ही नहीं। कीर्तन कैसे करें, क्या कोई गुणगान नहीं है। स्मरणम कैसे करें, सेवा कैसे करें, पूजा कैसे करें, नमस्कार नमस्कार तो करते हैं कुछ, नमस्कार तो कुछ करते हैं थोड़ा, है ना। और दास्यम और सख्यम आत्मसमर्पणम ये सब चीज़ें नहीं हैं दूसरे धर्मों में, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हर एक व्यक्ति को भगवान का भक्त बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आना चाहिए, यहाँ तो आना ही पड़ेगा हर व्यक्ति को, है ना। क्योंकि भक्त बनने पर मनुष्य को अन्य सारे गुण स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भक्त बनना यानी ये 9 गुणों को विकसित करने से वो पहले के 21 गुण अपने आप आ जाएंगे, ये भी प्रभुपाद कहते हैं। और इस पर श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो बही। जिसमें कृष्ण की अविचल भक्ति है उसमें कृष्ण तथा देवताओं के सारे सद्गुण निरंतर प्रकट होते रहते हैं। कृष्ण के भी गुण और देवताओं के भी गुण है, मात्रा उतनी नहीं होगी। कृष्ण में जितने भी गुण हैं उनकी मात्रा कितनी है, असीमित है। तो हमारे अंदर वो गुण विकसित हो सकते हैं लेकिन बहुत सीमित मात्रा में, आंशिक मात्रा में, लेकिन गुण हमारे अंदर भी कृष्ण के विकसित हो सकते हैं, वो विकसित करना चाहिए। आगे, किंतु जिसके अनुरक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होते, क्योंकि वो मनोकल्पना द्वारा भौतिक जगत में लगा रहता है जो भगवान का बाहरी रूप है, है ना। तो ये तो इसलिए प्रभुपाद अब इन 9 लक्षणों को, धर्म के जो विशेष लक्षण है 9, इनकी चर्चा कर रहे हैं कि इनका जो है विशेष रूप। अगर आप भक्त नहीं बने, इन 9 लक्षणों को अगर आपने विशेष नहीं किया तो फिर कोई धर्म गुण नहीं रहेंगे। अगर आपने कुछ विकसित कर भी लिए हैं तो फिर से मिट जाएंगे। और ये गुण विकसित करते हैं दूसरा चला जाता है, दूसरा करते हैं तीसरा चला जाता है, खींचतानी चलती रहेगी, आपके हाथ में आएंगे नहीं। बाकी जो 21 लक्षण है धर्म के आपके हाथ में अपने आप आ जाएंगे अगर आप क्या करते हैं 9 लक्षण विशेष इनका पालन करते हैं। तो ये भागवत 5:18-12 का श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत किया है, है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, अतः हमारा कृष्ण भावना आंदोलन सबों को गले लगाने वाला है। प्रभुपाद ने क्या कहा, सबों को गले लगाने वाला है, मतलब सबको हम अधिकार दे रहे हैं श्रवण कीर्तन करने का। मंदिर में हमें जो है ये श्रवण कीर्तन का जो प्रोग्राम रखा हुआ है ना, तो दरवाजा खुला हुआ है, किसी की हम चेकिंग नहीं करते कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हैं? कोई ऐसी मशीन नहीं लगाई है कि हिंदू हिंदू को आने दिया जाएगा, मुसलमान को नहीं आने दिया जाएगा, ईसाई को नहीं आने दिया जाएगा। जगन्नाथपुरी में है ना इस तरह का, हाँ, केवल हिंदू, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबों को गले लगाने वाला है, अतः हमारा कृष्ण भावना आंदोलन सबों को गले लगाने वाला है। मानव सभ्यता को चाहिए कि इसे गंभीरतापूर्वक स्वीकार करे और विश्व शांति के लिए इन नियमों का अभ्यास करे। तो प्रभुपाद ने इतना मतलब उदारतापूर्ण तात्पर्य दिया है कि जिसमें मतलब ये नहीं लगता है कि भाई हम लोग सीमित हैं कि हम तो इसको मानते हैं, तुम नहीं मानते हो तो हम तुमसे नफरत करेंगे, ये नहीं है। तो प्रभुपाद सामान्य लक्षण बताते हैं और इनके द्वारा अगर आप शुद्ध होते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। प्रभुपाद ये बता रहे हैं, तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। अब किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा आप लोगों की ओर से? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। है तो ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न है किसका? आपका? हाँ,
इसमें बताया ना भगवद गीता भागवतम और महाभारत रामायण सबों का अध्ययन करना चाहिए। तो महाभारत रामायण सब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। तो कई बार ज्ञान की निंदा करते हैं कई लोग कि नहीं ज्यादा ज्ञान नहीं है, स्पष्ट ही कह रहे हैं।
स्वाध्याय, स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है कि इन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये जो शास्त्र हैं ये मानव समाज के कल्याण के लिए हैं। ये जो शास्त्र हैं ये मनुष्य की बुद्धि के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये जो है भगवान की ओर से ये बनाए गए हैं, या भगवान से जिनको शक्ति प्राप्त हुई है उनके द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं। इन शास्त्रों में चार प्रकार के दोष नहीं हैं जो हमारे ज्ञान में होते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करण पाठों। तो ये जो दोष हैं ये शास्त्रों में नहीं है, इसलिए हमें इनसे इनका अध्ययन करना चाहिए, तो ये जरूरी है, ठीक है ना। और अभी तो शास्त्रों को सरल तरीके से प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों में दिया है, तो हम प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। अब हमारे लिए अगर जो व्यवहारिक बातें हैं वो ये हैं कि हमें इन पुस्तकों प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, 19वां जो नंबर है आत्मविमर्शनम, आत्मविमर्शनम का क्या मतलब है?
अपने आप शरीर है या आत्मा है इसके बारे में सोचना।
आत्मविमर्शनम, हाँ, आत्मविमर्शनम का मतलब है कि हमें विचार करना है, इसमें हमें विचार करना है आत्मा के विषय में। तो प्रभुपाद ने इसको बहुत महत्व दिया है, हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, इस बात को प्रभुपाद ने बहुत महत्व दिया है और बहुत विस्तृत चर्चा की है, है ना, कि हम ये शरीर नहीं हैं। और गीता में भगवान ने शुरू के को बहुत से श्लोकों पर चर्चा की है ना, क्योंकि अर्जुन का भी जो मोह था और हम लोगों की भी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएँ इसी कारण से पैदा होती हैं कि हम अपने को शरीर समझते हैं, मैं शरीर हूँ और फिर भी मेरे कुटुंबी हैं, मैं शरीर हूँ तो मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये सब जो है संबंध, तो पूरा का पूरा जो है मतलब अपनी जो पहचान है उस भौतिक संसार में हम बना लेते हैं और इसमें बंध जाते हैं, बहुत बुरी तरह से बंध जाते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमण की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री श्री कृष्ण बलदेव की जय। गौर निताई की जय हो।